अभय करीब 4 साल बाद आस्तिक को देख रहा था। आस्तिक अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था क्योंकि उसकी हल्की हल्की मूछें आ रही थीं, लेकिन था तो वो एक 15-16 साल का लड़का ही, पर उसकी पर्सनालिटी कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। अब ये वो पहले वाला बच्चा आस्तिक नहीं था, उसकी चाल में एक रौब था और चेहरे पर एक गुरूर। तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, अभय ने आस्तिक पर जोर से चिल्लाते हुए कहा। क्योंकि समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलनी चाहिए, आस्तिक कुर्सी पर बैठते हुए अपना एक पैर दूसरे पर पैर चढ़ाते हुए कहता है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अभय जोर से चिल्लाकर कहता है। दोबारा अगर ऐसे कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जुबान निकाल लूंगा, आस्तिक ने भी अपने गुस्से भरी नजरों से अभय को देखते हुए कहा। तुमने बाप होने का कोई फर्ज नहीं निभाया है और न ही कुछ ऐसा किया है जिससे मैं तुम्हें अपना बाप मानूं। आस्तिक बदतमीज लड़के, क्या यही सिखाया है सीमा ने तुम्हें? क्या यही परवरिश दी है उसने तुम्हें? सीमा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब कहाँ गई उसकी बातें? अपने बेटे को किसी से बात करने की तमीज नहीं सिखाई है उसने? तभी आस्तिक अपने हाथों में एक चाबुक लेता है और उसे जोर से जमीन पर मारते हुए कहता है। मेरी माँ ने मुझे जो सिखाया है वो अगर तुमने सीखा होता ना तो आज हालात यहाँ तक नहीं होते। और खबरदार जो आज के बाद मुझे दोबारा मेरे नाम से बुलाया तो। लोग मुझे राजा साहब कहते हैं और मेरे सामने अदब से अपना सर झुकाते हैं। ऊंची आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता हूँ मैं, इसलिए आवाज़ और नज़रें दोनों नीचे रखो। आस्तिक की बात सुनकर अभय के होश उड़ गए। वो हैरानी से कहता है, राजा साहब, तुम इतनी सी उम्र में पीने लगे हो? कौन राजा साहब? कहाँ का राजा साहब? कौन सी फटीचर राज्य के राजा हो तुम? जरूर तुमने वहां जाकर भी उस राज्य को बर्बाद ही किया होगा, और कर भी क्या सकते हो तुम? खून तो तुम्हारे अंदर सीमा का ही है ना? तभी आस्तिक गुस्से में अपनी जगह से उठता है और एक तेज चाबुक अभय के पैरों पर मार देता है, जिससे वो दर्द से तड़पने लगता है। आस्तिक खतरनाक तरीके से अभय के कानों में झुकते हुए कहता है, मेरी माँ का नाम दोबारा अपनी जुबान से मत लेना, और हाँ, आज से लेकर 10 दिन तक तुम्हें हर वो दर्द याद आएगा जो तुमने मेरी माँ को दिया है। लेकिन पता है क्या, मेरा मकसद तुम्हें दर्द देना नहीं है बल्कि तुम्हारा दिल निकालना है। आस्तिक की बात सुनकर अभय के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो डरती हुई नजरों से आस्तिक को देख रहा था तो आस्तिक एक शैतानी मुस्कान के साथ अभय को देखते हुए कहता है, बिल्कुल सही सुना है तुमने, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, क्योंकि इसी दिल के चक्कर में मेरी माँ ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। तुम्हें दिल से प्यार करती थी ना, मेरी माँ का कहना ये था कि उसका दिल तुम्हारे पास है, तो मैं अपनी माँ की कोई चीज तुम्हारे पास नहीं रहने दे सकता हूँ, उनका दिल भी नहीं। अभय के चेहरे पर डर उमड़ आया था। उसने गिड़गिड़ाते हुए आस्तिक को देखकर कहा, आस्तिक ऐसा मत करो, देखो मेरी अभी अभी एक बेटी हुई है, वो बहुत छोटी है, उसे मेरी जरूरत है। पर नहीं, आस्तिक ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अभय से कहा, मेरी बहनों को भी अपने बाप की जरूरत थी, पर क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी दुनिया में जब वो पल सकती है तो तुम्हारी बेटी भी पल जाएगी। अचानक से कुछ गिरने की आवाज से आस्तिक अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो इस वक्त आराम से अपनी माँ के कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसने जो सालों पहले अभय के साथ किया था उसे ही याद कर रहा था। आस्तिक का चेहरा गुस्से में भर गया था। वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर कहता है, मैंने उस आदमी को एक बार मार दिया है, फिर भी मेरा मन चाहता है कि मैं उसे हर बार मारूं, बार बार मारूं। मैं क्या करूं माँ, जब भी मैं सोचता हूं कि उसका खून मेरी रगों में बह रहा है मुझे खुद से घिन आती है। माँ, तुम उसके जैसे कमीने से कैसे प्यार कर सकती हो? तुमने दिलोजान से उस आदमी से प्यार किया था और उसने तुम्हें पैरों की जूती से बढ़कर और कुछ भी नहीं समझा। आस्तिक अपनी माँ की तस्वीर से बात कर रहा था कि तभी दरवाजा खुलता है और सामने उसे अरुणिमा नजर आती है। अरुणिमा को देखकर आस्तिक हैरान रह जाता है। अरुणिमा भागते हुए आस्तिक के पास आती है और सीधे उसके सीने से लग जाती है। आस्तिक थोड़ा हैरान तो होता है, पर फिर अरुणिमा को अपनी बाहों में भर लेता है और धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगता है। 1 महीने बाद, आई लव यू आस्तिक, अरुणिमा आस्तिक के गर्दन को चूमते हुए कहती है। आई लव यू टू अरुणिमा, आस्तिक ने भी अरुणिमा के माथे को चूमते हुए कहा। आस्तिक और अरुणिमा इस समय अपने कमरे में थे और ब्लैंकेट के अंदर अपने हसीन पलों को एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। आधी रात के बाद जब आस्तिक और अरुणिमा अपने एक प्यार भरे लंबे सफर के बाद थक गए थे, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। अरुणिमा की तेज तेज सांस आस्तिक को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन वो जानता था कि अरुणिमा आगे उसे झेल नहीं पाएगी, इसीलिए उसने खुद के इमोशन पर काबू किया। आस्तिक बगल के ड्रॉर में से एक फाइल उठाता है और उसे अरुणिमा के सामने करते हुए कहता है, मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। अरुणिमा उठकर बैठ जाती है और अपना बालों का जूड़ा बनाते हुए हैरानी से फाइल को देखने लगती है। उसने ब्लैंकेट को अपने सीने तक खींचकर ढका हुआ था। वो उस फाइल को लेती है और उसके पन्ने पलटते हुए उसे हैरानी से देखने लगती है। वो हैरान नजरों से आस्तिक को देखकर कहती है, आपने अपना होटल मेरे नाम कर दिया, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया है? आस्तिक अरुणिमा के बालों को धीरे से उसके कान के पीछे करता है और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, हैप्पी एनिवर्सरी रानी साहिबा, और ये आपकी जन्मदिन का तोहफा है। अपनी खूबसूरत सी बीवी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, पर इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारे लिए तो दिल, जिगर, जान, किडनी, कलेजा, फेफड़ा सब हाजिर है। आस्तिक के ये कहते ही अरुणिमा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अरुणिमा के ऐसे हंसने पर आस्तिक के हाथ अरुणिमा की कमर पर कलाकारी करने लगे और अरुणिमा मचलते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। आस्तिक अरुणिमा को खींचकर अपने ऊपर लाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है और वही कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले किया था। अरुणिमा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो किया था। और फिर से आस्तिक अरुणिमा के गालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ तो कहाँ ऐसा लिखा है कि अपनी बीवी को प्यार करने के लिए रूल्स होने चाहिए। अरुणिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और आस्तिक उसे पलटकर अपने नीचे कर लेता है। रात के एक खूबसूरत एहसास के बाद अरुणिमा और आस्तिक सो चुके थे, लेकिन हमेशा की तरह अरुणिमा जल्दी उठ जाती है। वो फ्रेश होकर कमरे में आती है तो देखती है आस्तिक अभी पेट के बल बिस्तर पर ही सो रहा है। अरुणिमा अपने गीले बालों में एक लेक्चर लगाती है और आस्तिक को उठाते हुए कहती है, आस्तिक उठिए, आपको ऑफिस जाना है। अरुणिमा की आवाज लगाने पर आस्तिक अंगड़ाई लेकर उठता है। अब उसकी नजर अरुणिमा पर जाती है जो ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपनी साड़ी बांध रही थी। दोनों की शादी की पहली सालगिरह थी।